आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। आइए आज आपके मुलाकात करवा रही हूं ऑस्ट्रेलिया डे पर मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी OAM से सम्मानित डॉक्टर सुनीला श्रीवास्तवा जी के साथ में। सुनीला जी को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता जगाना और उसमें योगदान देने के लिए कई और सम्मान भी मिल चुके हैं, जैसे कि विक्टोरिया सरकार की तरफ से मल्टीकल्चरल अफेयर्स में उनके योगदान के लिए मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड, सर जॉन मोनैश अवार्ड इंस्पिरेशन वुमेन लीडरशिप के लिए और 2021 में विक्टोरियन ऑनर रोल ऑफ वुमेन। 2012 में उन्होंने इन टच प्रोग्राम के साथ में वॉलेंटियर किया था और इसके अलावा वो जेंडर इक्वालिटी एडवाइजरी कमेटी और प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वायलेंस जो कि सिटी ऑफ वरुंडारा का प्रोजेक्ट था उसके लिए वो एडवाइजर भी रहीं। उन्होंने 2017 में हम तुम रिसोर्स सेंटर की स्थापना की और 2008 से लेकर 2020 तक वो जुड़ी रहीं संकट मोचन समिति के साथ में। तो उनसे मुलाकात में यही जानना चाहा कि इस सब की शुरुआत कैसे और कब हुई थी।
सबसे पहले क्या हुआ, जब मैं 1973 में मेलबर्न आई थी एज ए न्यूली वेडेड वाइफ, तो यहाँ पे कोई भी चीज अवेलेबल नहीं थी, बहुत ही आइसोलेटेड थे हम लोग, करीब 10-15 फैमिली ही थे यहाँ पे, इंडियन फैमिली। तो इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो उस समय से मुझे हमको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि जो नए लोग आए उनके लिए कुछ तो हो, ऐसा कि कुछ ट्रस्ट उनके लिए कुछ ऐसा बना जिस कारण कि वो अपनी जिंदगी यहाँ शुरू कर सके। तो ये पहली शुरुआत थी उसकी। और धीरे धीरे हम लोगों ने भी अपना सोशल नेटवर्क उस समय बढ़ाना शुरू किया। तो इंडियन फैमिली के साथ साथ हम लोग जो ऑस्ट्रेलियन या वेस्टर्न फैमिली थी, क्योंकि वही जो लोग यहाँ ज्यादा थे, तो उन्होंने हमको सिखाया कि हाउ टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। तो जो वो वैल्यू मैंने जो एक्वायर करी उस समय वहां पे, तो वही मैं अपने जो आने वाले नए लोग थे उनको देना चाहती थी।
जी,
उसके साथ साथ जब और हम लोग आगे बढ़े, जब हम लोगों की फैमिली शुरू हो गई यहाँ पे, तो उस समय हमने सोचा कि देखो हमारे पास तो इतनी स्ट्रांग इंडियन वैल्यूज है, हमारा कल्चर बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, तो ये हमारे बच्चे क्या समझेंगे इसको, ये तो यहाँ पढ़ रहे हैं, वो तो उस समय इतना ट्रेडिशन था कि वो सारे इंग्लिश में ही बात करते थे, हमारे बच्चे कभी हिंदी में बात करना नहीं सीखे। तो जब ये शुरू हुआ तो हम लोगों ने एक हवन ग्रुप यहाँ पे शुरू किया।
अच्छा।
और उसमें हम लोग आर्य समाजी हवन करते थे और इस तरह हम लोगों ने अपनी कल्चरल वैल्यू को अपने बच्चों के साथ शेयर करना शुरू किया।
जी, और जब यहाँ पर प्रवासी भारतीय और उपमहाद्वीप से आने लगे तो उनके साथ में कुछ सामाजिक बुराइयां भी साथ साथ आती गईं, सामाजिक बुराइयों के बारे में भी आपको पता चलता गया। तो वो क्या पल था जब आपने हम तुम टास्क फोर्स बनाई थी, और ये बात है 2012 की, यानी आपके आने के बहुत अरसे के बाद में आपको ये परिवर्तन दिखाई दिया?
एक्चुअली ये सब बातें सबसे शुरू में भी होती थी। एक्चुअली मैं भी कहूंगी कि ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे साथ वॉयलेंस तो नहीं कहना चाहिए उसको, परंतु वो जो डिसरिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप थी वो तो होते ही थी। जैसे कि उस समय लोग, अगर मान लीजिए हम लोग पार्टी में जाते थे और मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मेरे हस्बैंड कहने लगते थे कि आप जो भी होस्ट रहता था कि इनको रेसिपी दे दीजिए। एक दिन उन्होंने ये भी कहा कि जीरे आलू की सब्जी बनी थी कि इसके रेसिपी दे दीजिए। तो उस समय मुझे बड़ा बुरा लगा कि क्यों ऐसा ये बेटा बोलते रहते हैं, हालांकि ऐसी कोई मजाक की बात थी, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी सी बातों से होती रहती थी। उसके बाद पता चला कि दूसरे घरों में और भी ज्यादा चीजें होती हैं। तो जब ये हमको अपॉर्चुनिटी मिली एक्चुअली 2000 11 में, उस समय मेलबर्न में 11 मर्डर सुसाइड हुए थे इंडियन कम्युनिटी में. तब हम लोगों ने सोचा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी में. तो जब भी, क्योंकि जब भी हम लोगों से बात करते थे तो कहते थे नहीं हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं होती है, वेस्टर्न सोसाइटी में ये सब चीजें होती हैं. पर जब ये हुआ तब हम लोगों को लगा कि नहीं, समथिंग वेरी रॉन्ग इज हैपनिंग और हमको लोगों को इसके विषय में शिक्षित करना पड़ेगा. और ये अपॉर्चुनिटी हमको दी इन टच ने, जब उन्होंने हमको अपने साथ इन्वॉल्व किया इसके लिए और स्पेसिफिकली ये बताने के लिए कि हाउ वी कैन स्प्रेड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप अवेयरनेस इन इंडियन कम्युनिटी. तो उस तरीके से ये ऑफिशियली ये चीज शुरू हुई और तब से हम लोगों ने काफी एक्टिविटीज करी अवेयरनेस के लिए. और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने एक रिसोर्स सेंटर भी, हालांकि वो वर्चुअल है, देयर इज नो ऑफिस और एनीथिंग फॉर इट, तो उसमें हम लोगों ने एक रिसोर्स सेंटर बनाया. और उस रिसोर्स सेंटर में हम तुम ग्रुप में हमारे पास स्पेशलिस्ट है जिसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिक्स हैं, काउंसलर हैं, सोशल वर्कर हैं. तो हमारे पास जब हम लोगों को लोग अप्रोच करते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या के विषय में जानते हैं और उनको वो हेल्प देने की कोशिश करते हैं जो वो चाहते हैं. हम कोई चीज अपनी तरफ से थोपते नहीं है उन लोगों के ऊपर कि नहीं आप ये करो या वो करो, जो वो चाहेंगे उस तरीके से हम हेल्प करते हैं. इसका इम्पोर्टेंस ये है एक्चुअली कि इस तरह अगर ये लोग जो ऑफिशियल ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज में जाते हैं तो वो रिशफल होते हैं, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाना को, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाओ. और आपको तो मालूम ही है कि ऐसे लोगों को इवन हमसे बात करना मुश्किल होता है, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं होते हैं, वो कभी घर के बाहर भी नहीं निकल पाते कभी कभी तो बेचारे ऐसे लोग. तो इसलिए हम लोग उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देते हैं और उससे फिर हम उनको बताते हैं.
जी, एक बात आपसे और समझना चाहूंगी. देखिए, प्रवासी आते हैं तो समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ में प्रवासी आए तो क्या इस समस्या में उतनी ही तेजी के साथ में बढ़ोतरी भी हुई है?
एक्चुअली जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोग आपको बताया फैमिली वॉयलेंस करके बात नहीं कर पाते थे, इसीलिए हम बात करते थे रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप की.
जी,
और अप टू 2020 हम लोग उस समय तक ये हो गया था कि हम लोगों से डायरेक्ट फैमिली वॉयलेंस के ऊपर बात करना शुरू कर दी थी और लोग बात करते थे. दैट वॉज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि लोग धीरे धीरे अपने घोंसलों से बाहर निकल रहे थे.
जी, जागरूकता आनी शुरू हो गई और उन्होंने उसको पहचानना शुरू कर दिया.
बिल्कुल, और ये नतीजा यही था कि हमारे ग्रुप ने तो अवेयरनेस की एक्टिविटीज करी ही, पर इसके साथ साथ मेलबर्न में और भी दूसरे ग्रुप थे उन्होंने ये एक्टिविटीज करी, क्योंकि मेलबर्न में इंडियन हमारे भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है. और उस संख्या के साथ साथ ये कठिनाइयां भी और ज्यादा बढ़ गई है.
जी,
तो इसलिए एक एक व्यक्ति, वो कहते हैं ना कि एक चना भाड़ नहीं झोंक सकता, आपको मिलके काम करना पड़ेगा, आपको कई तरीकों से काम करना पड़ेगा. लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे और मेरे ख्याल से ये जागरूकता लोगों में आ रही है, अन्यथा लोग हम लोगों को अप्रोच नहीं करते.
हाँ, हमारे जो सोचने का नजरिया है उसको हर तरफ से बदलने की आवश्यकता होती है. जो हमारा अध्यात्म है हमें एक तरह की शांति जो प्रदान करता है और जिससे हम एक अच्छे कार्य की तरफ अग्रसर होने लगते हैं, तो उसकी तरफ फिर आपने ध्यान दिलाना शुरू किया.
जी, मैं बताना चाहूंगी
जी
कि संकट मोचन समिति का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट. संकट मोचन में हम लोगों का मैं जो मिशन था वो था कि हम उनको फिजिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल और हेल्प प्रोवाइड करते थे और हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म वहां पे बना दिया था संकट.
जी,
क्योंकि वो दैट वाज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ कि हम लोगों को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी जिसके कारण संकट मोचन केंद्र और अब एस्टेब्लिश हो रहा है संकट मोचन इंडियन कल्चरल सेंटर, उसके लिए हम लोगों को करीब $1 मिलियन की ग्रांट दी एंड्रयू गवर्नमेंट में, और हम लोग बहुत थैंकफुल थे उनके। और वो जमीन वगैरह जब हम लोगों ने, जब मैंने संकट मोचन समिति छोड़ी उस समय तक हम लोगों ने जगह खरीद ली थी और प्लेटफॉर्म वहां पे तैयार था, अब वो उसको रिफर्बिश करके उसको शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और विद रिस्पेक्ट टू फैमिली वॉलेंस, वो जगह बहुत इम्पोर्टेंट थी लोगों के लिए, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी में लेडीज लोगों को मंदिर जाने से कोई नहीं रोकता। तो कई जो केसेस हम लोगों को हमारे सामने आए वो संकट मोचन मंदिर के से आए, क्योंकि लोगों को एक जगह मिल गई थी वहाँ। वहाँ के चुपचाप बैठे रहते थे तो हम लोगों को लगता था कि क्यों ये लेडीज आके यहाँ चुपचाप कई बार बैठी रहती हैं, कुछ बात ही नहीं करती हैं। तो हम उनसे जाके बात करते थे, जब हम उनसे बात करते थे जाके तो सारी चीजें सामने आ जाती थी फिर की कैसा क्या हो रहा है। तो इसलिए एक थॉर लोग कहते ना, दैट वॉज दी होम अवे फ्रॉम होम फॉर पीपल।
जी, ये जगह वो बन जाती हैं जहाँ आप बिना किसी डर के एक आस्था एक विश्वास के साथ आते हैं और अपने मन की बात भी कर सकते हैं, और उस अदृश्य शक्ति के रूप में कई वहाँ पर सहायताएं मौजूद होती हैं जिसका शायद हमें पता नहीं होता है।
देखिए मंदिर बहुत है, मेलबर्न में भी बहुत है, दुनिया में भी बहुत है, मंदिर और मंदिर, ओके, वो सबकी आस्था अलग अलग है, पर उसका जो कहना चाहिए बाय प्रोडक्ट या जो कुछ भी कह लीजिए ये जो चीज थी जो हम लोग चाहते थे वो हम लोगों ने वहां पे एस्टेब्लिश कर दी, कि लोग यहाँ फ्रीली आए और हम स्पिरिचुअली हम लोग उनको हील कर सके। दैट वॉज दी रिचुअल आर नॉट इम्पोर्टेंट, हीलिंग इज इम्पोर्टेंट,
और अभी भी समय की यही आवश्यकता है। तो सुनीला जी, आप तो इस क्षेत्र में इतनी कर्मठता के साथ में जुड़ी हुई हैं, तो यही कहूंगी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।
अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और SBS को धन्यवाद। बस हमारी एक आपसे यही प्रार्थना है कि आप एक ये संदेश लोगों को जरूर दे दें कि देखिए हमारे पास बहुत कम समय है, जिंदगी में हम एक ही बार जीने के लिए मिली है, इसलिए उसको अच्छी तरह से जीए और उसके साथ साथ सबका सम्मान कीजिए। अगर आप एक दूसरे का सबका सम्मान करते रहेंगे तो आपको कभी जीवन में कठिनाई नहीं आएगी।
क्या बात, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, धन्यवाद।
थैंक यू नीता जी, थैंक यू वेरी मच।
इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़िए जब आप चाहें, SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।